ओम शांति, ओम शांति। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि तुम बच्चे डबल मालिक बनते हो, एक तो ब्रह्मांड के मालिक बनते, दूसरा नई दुनिया के तुम मालिक बनते हो। बाबा ने कहा कि मैं केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन तुम बच्चे मेरे से ऊंच हो। आज तो बाबा ने बच्चों को कहाँ से कहाँ ऊंचाई की ओर ले गए हैं और बहुत प्यार किया है। तो बाबा कहते इसलिए बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने याद दिलाई कि तुम्हारे पास सतयुग के अंदर कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना सुख था, लेकिन वो सब महल कहाँ चले गए। तो बाबा ने कहा फिर से सतयुग में जाना है तो उसके लिए तुम बच्चों को क्या करना है, बेहद का वैरागी बनना है, वानप्रस्थी बनना है। बेहद के वैरागी बनेंगे तब जाकर के नई दुनिया में अपना ऊंच पद पा सकेंगे। तभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 30 मई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए कहाँ बैठे हो। कितना अच्छा नाम बाबा ने दिया है, ईश्वरीय धाम, ईश्वरीय परिवार। कभी बाबा कहते ईश्वरीय परिवार है, कभी बाबा कहते ये ब्राह्मण परिवार है। तो आज बाबा ने कहा है हम कहाँ बैठे हैं बताओ, ईश्वरीय धाम। ये हमारा परिवार मधुबन, हमारा ईश्वरीय धाम है। तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो, ये सत्य का संग है। दो दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, सत्य का संग जो है वो कहाँ ले जाता है और कुसंग कहाँ ले जाता है। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। मीठे बच्चे अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो, ये सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे। जो कहते हैं बाप से ऊंचे वो हाथ खड़ा करें, हैं हैं। अरे बाबा तो चढ़ाने के लिए प्यार करते हैं। बच्चों को भी माँ बाप क्या करते हैं कि तुम तो मेरे से बड़ा है, तुम बहुत बड़ा हो गया। आज बाबा भी बच्चों को इतनी महिमा कर रहे हैं, इतना ऊंचा कर रहे हैं। कितना भी बाबा कहें कि तुम बच्चे बाप से ऊंच हो, लेकिन हमारा तो दिल नहीं मानता। बाबा ऊंच है, बाबा हमको ऊंच बनाते हैं। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे बाप से ऊंच हो, नीच नहीं कैसे। इसका उत्तर है, बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता। आज बाबा ने कहा डबल सितार भी दे दिया और फिर मालिक भी बना दिया, फिर मालिकों को सलाम भी करते हैं, इसलिए तुम मेरे से ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो क्या करेंगे? अरे ये तो नई बात, बाबा नमस्ते करे तुम नमस्ते नहीं करेंगे आप? बाबा ने उलहना दिया। देखो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते, रिस्पांस भी नहीं करते हो। बाबा खुद बोल रहे हैं, बोलो सब, मीठे बाबा नमस्ते। देखो बाबा पहचान गए बच्चों को, कहते रिस्पांस भी नहीं करते हो, इतने वंडरफुल बच्चे हैं। बाबा दुनिया में भी कोई नमस्ते करता है कुछ करता है तो उसका रिस्पांस करते ना। अभी फिर से, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते, रिस्पांस भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते बोलो, और जोर से बोलो ना परम धाम है। हाँ अब बाबा को आवाज पहुंची, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं और विश्व का मालिक नहीं बनते। बाबा को कितनी बार कहो बाबा एक बार स्वर्ग में आकर के हमको देख के तो जाना। बाबा क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, ड्रामा में मेरा पार्ट ही नहीं है तो बाबा तो आते ही नहीं है। लेकिन स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? अब बताओ बड़ा कौन ठहरा है? बाबा बच्चों को कहते बड़े हैं, मेरे से बड़े हो, लेकिन बच्चे क्या कहेंगे, बाबा हमसे बड़ा। आज बाबा बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बताओ बड़ा कौन? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। बाबा को थैंक्स भी देते हैं, बाबा को नमस्ते भी करते हैं, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है, जिनको निश्चय है, निश्चय बिगर तो कोई यहाँ आ न सके। यहाँ बाबा के घर में कौन आते हैं? जिनको निश्चय है, बाबा से प्यार है। तो बाबा कहते निश्चय बिगर तो कोई आ न सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास या मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। बाबा कहते क्या पक्का है हम कोई मनुष्य बाप, टीचर और मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, अपने बाबा के पास जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर और रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो एक हैं, वह मनुष्य तो अनेक हैं, ये एक ही हैं। ये परिचय कोई को भी नहीं था। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी है कि रचयिता और रचना को कोई नहीं जान। शास्त्रों में भी है, ऋषि मुनि आदि भी कह के गए कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में है कि रचयिता और रचना को कोई नहीं जानते। ना जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वह समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर और सतगुरु भी बनते। तो बाबा कौन है? हमारा रूहानी बाप भी है, रूहानी टीचर भी है और रूहानी सतगुरु है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्व शास्त्रमयी श्रोमणी, उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहे। गीता ही सर्व शास्त्रों का माँ बाप है, वही आधार है। बाकी शास्त्रों को बाबा कहते हैं मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है, भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंचते ऊंच गीता ही गाई हुई है, तो गीता हो गई क्रिएटर। गीता का नाम पहले बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच है, दूसरा कहा माँ बाप है, तीसरा बाबा ने कहा ज्ञान है, चौथा क्या कहा गीता हो गई क्रिएटर। बाकी शास्त्र आदि सब हैं उनके पत्ते, क्रिएशन रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो भी अल्प काल के। दुनिया में भी लौकिक में भी यही होता है कि रचना से इतना नहीं मिलता है, अगर मिलता भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वर्षे का अधिकारी तो अपने बाप के वर्षे का अधिकारी होता है ना, तो अगर मिलता भी है एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्प काल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्प काल का सुख मिला फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े, यहाँ तो एक निराकार बाप ही 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, जो कोई भी मनुष्य दे न सके, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना। पढ़ते पढ़ते कई के बातें सुनाते सुनाते हालत क्या हो गई, कोड़ी जैसे बन गए, वह तो वर्थ नॉट पेनी बना देते। बाप आकर के क्या बनाते पाउंड, इतना ऊंच बना देते हैं बाप बनाते पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना, सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते, सब में परमात्मा है तो फिर क्या हो जाएगा। बाबा कहते अगर सब में परमात्मा है तो क्या कहेंगे, फादरहुड हो गए, सब में परमात्मा सब परमात्मा हो गए, फिर कौन किसको याद करेगा। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है, फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले, किसका दुख कौन हरे। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है, फादर ही फादर का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। भाई भाई कहो तो ठीक है, बाप ही बाप है तो बच्चे कहाँ गए, तो बाबा कहते हैं फादर ही फादर का अर्थ कोई नहीं निकलता है। बाप बेटे समझाते हैं ये है ही रावण राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, रावण राज्य आना रावण राज्य को बदलना, तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तो बाबा बता रहे ड्रामा के अंदर हर सीन अलग अलग है और बाबा ने चित्रों में भी ये सब कुछ क्लियर कराया था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्टर डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं उससे मर्तबा मिलता है। बैरिस्टरी पढ़ेंगे डॉक्टरी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे बैरिस्टर बनेंगे, उससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनो। लौकिक में भी पढ़ाई होती है ना, पढ़ते हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, ये स्टेटस प्राप्त करने के लिए, तो समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो जिससे तुम सुख धाम में जाते, सत्संग में बैठना इससे हम सुख धाम में जाते हैं। सत धाम दो हैं, कौन कौन से सत धाम दो हैं, बाबा कहते कौन से दो हैं, एक है सुख धाम और दूसरा है शांति धाम परम धाम। तो यहाँ सत्संग दो हैं, सत धाम भी दो हैं, एक सुख धाम दूसरा है शांति धाम, ये है ईश्वर का धाम। याद है कभी बाबा ने ऐसा कहा हो, कहा है बाबा ने लेकिन याद नहीं, तो हमारे कितने धाम हो गए, सत का धाम है और सत के धाम दो और ईश्वर का धाम मधुबन, बाबा का घर बाबा का परिवार, ये है सत का, ये है ईश्वर का धाम। बाप रचयिता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है अब बाबा क्या कहते, बाबा से पढ़ो, होशियार बनो, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे अभी समझदार होकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते। शिव के मंदिर में फल भी चढ़ाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, घी भी चढ़ाएंगे, गुलाब के फूल भी चढ़ाएंगे, फिर दूध में क्या करते हैं, दूध में पानी डाल देते, पूरी प्योर दूध नहीं डालेंगे, दूध में भी पानी में 1% दूध होगा, बाकी सारा का सारा पानी, क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है। फिर अक के फूल भी चढ़ाते, तो बाबा कहते उनको जाकर के पूछो ऐसा क्यों करते हैं, बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में तो अक के फूल नहीं चढ़ाए, वहां तो गुलाब के फूल सुंदर सुंदर चढ़ाएंगे, अच्छा बढ़िया भोजन रखेंगे, तो कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां तो बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते, अपनी सब तमो प्रधान वृत्तियां भी अर्पण करते हैं, और फिर जब अच्छे बन जाते हैं तो बाबा के सामने अपनी भावनाएं भी रखते हैं, तो यहाँ दोनों प्रकार के फूल रखते हैं। तो बाबा कभी कभी आते थे ना, क्लास में आते थे, यहाँ जो बगीचा है झोंपड़ी वाले बगीचे में बाबा चक्कर लगाते थे, चक्कर लगा के वैरायटी फूल साथ में ले आते थे, कभी कभी वो माली टोकरी भर के दे देता था वैरायटी फूलों की, तो बाबा आकर के यहाँ पर क्लास में वो फूल दिखाते थे और बच्चों को बताते थे, ये आपका फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये मोतिये का फूल है, ये चंपा का फूल है। तो बाबा कहते वैरायटी प्रकार के बच्चे वैरायटी फूल हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं, शिव के आगे फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कुछ भी जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान पढ़ाते हैं, कोई भी मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जा सकता। कितना भी कहो कोई भी मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहे, उनको देवता कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको तो देवी देवता कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता ही कहेंगे। भगवान एक बाप है, वह सभी आत्माओं का बाप, सभी कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है, क्या नाम है, शिव, और तुम बच्चे हो, कौन हो, तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते, रुद्र यज्ञ रचेंगे बहुत बड़ा शिव का, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को, वह सभी का बाप है, हम सब ब्रह्मा के मुख से प्रजा, वह हम सब आपस में भाई भाई हैं, कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा के मुख द्वारा ही प्रजा रची जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, बीके कहलाते, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। अच्छा ब्रह्मा को किसने पैदा किया, अब कौन बताएगा, है शिव बाबा ने पैदा नहीं किया, शिव बाबा ने तो एडॉप्ट किया, ब्रह्मा को पैदा थोड़ी करते हैं, आपको भी पैदा थोड़ी किया, लौकिक माँ बाप ने किया, ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं अच्छा ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब है क्रिएशन। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे पैदा कैसे करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे ना, इतने सारे लाखों की संख्या में बच्चे हैं तो बाबा की तैसे थोड़ी पैदा करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जरूर एडॉप्ट करेंगे ना। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्टेड होते हैं उनको कहेंगे शिष्य, तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, बच्चे भी यहाँ, ब्राह्मण भी यहाँ। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है वो तो बिल्कुल संपन्न स्टेज पे है। गुलजार दादी भी बताती थी ना, बाबा के पास गई, वतन में गई तो बाबा को देख के कहती बाबा वहां पर आपको देखा, लेकिन आपका तो वो रूप अलग था। बाबा पूछते क्या रूप था? नहीं वो तो बिल्कुल लाइट ही लाइट था, आपका यहाँ का रूप और वहाँ के रूप में अंतर था। तो बाबा तो जानते थे वो संपन्न स्वरूप है। तो दादी तो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, पता भी नहीं था, तो दादी सुनाती थी। तो बाबा के सूक्ष्म वतन में है संपन्न स्वरूप और यहाँ पर है पुरुषार्थी स्वरूप। तो बाबा कहते हैं नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा है कहाँ? लौकिक ब्राह्मण जो है अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते, लेकिन ब्रह्मा है कौन, कहाँ है, कैसे उसने पैदा किया वो तो नहीं जानते ना। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ब्रह्मा कहाँ है? कहाँ है ब्रह्मा बाबा? कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी कहाँ है? है क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहाँ है बताओ भट्टी वाले, बोलो ना यही है ब्रह्मा बाबा, भल सूक्ष्म वतन में है तो हमारे सामने ना। तो बाबा कहेंगे, कहते हैं तुम कहेंगे ये बैठे हैं, ये कहेंगे होकर गया है, वो लोग कहेंगे होकर गया, तुम कहेंगे बाबा यहाँ बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य से देवता बनाना, राजयोग सिखलाना। बाबा कहते ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये तो बाबा का काम है, ये कोई मनुष्य का काम नहीं। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती थी, शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। बाबा आते हैं, बाबा आकर के राज्य देते हैं, इतना ऊंच बनाते हैं, लेकिन मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते ना। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। असल में आत्मा पवित्र होती है फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान और सतयुग में सब सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी तो राज्य किया। अब वहां पर पहला नंबर दूसरा नंबर गद्दियां चलती है ना, तो सत्यु में 8 गद्दी, त्रेता में 12 गद्दी, तो बाबा कहते उनका जो वारिस है फिर वो गद्दी पर बैठता है, उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकेंड ऐसे चला आ रहा है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय है सब तमो प्रधान पतित, यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। बाबा हमेशा कहते हैं कि कलयुग के अंदर एक भी मनुष्य पावन नहीं हो सकता और सत्यु में एक भी मनुष्य पतित नहीं हो सकता। सभी पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना, पुकारते रहते हैं आओ भगवान आओ हमें पावन बनाओ दुख से छुड़ाओ, तो बाबा क्या कहते हैं, पतित दुनिया हुई ना, इसको ही कलयुग नरक कहा जाता है, नई दुनिया को स्वर्ग और पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानता, कहाँ इतने ऊंच थे इतने महान थे, फिर कैसे गिने कैसे पतित बने, कैसे अपना राज्य गवाया, तो बाबा कहते ये कोई भी नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता। जब तक बाबा के नहीं बने हैं, बाबा को नहीं पहचाना है, तब तक कोई भी अपने जन्मों को नहीं जानता। कोई कितना भी कहे 5 जन्म के बारे में जानकारी करते रहते, लेकिन वो भी झूठ मूठ ही होता है, तो जानते तो नहीं है ना 84 जन्मों को। तो बाबा कहते हैं भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक, जो कलयुग के अंत में आएगा और एक ही जन्म होता है ना, तो मिनिमम एक। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाता, भल कहेंगे हम देवता धर्म के, उनको को ना तुम देवता हो, अपने को कहला नहीं सकते क्योंकि दैवी गुण नहीं है। कोई भी अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सब पतित पुजारी बन गए हैं, ये भी बाप पेट समझाते कौन सी बात है 84 जन्मों की और कैसे देवताएं बने, देवताएं कैसे पतित बन गए, फिर देवताएं कैसे बनेंगे। तो बाबा की तो ये भी बाप पेट समझाते, भगवानों वाच्य है ना, भगवान सभी का बाप है, वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं बाबा, कब आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। ये है संगम युग, कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। बाबा कहते हर युग के बीच में जो टाइम आता है वो भी संगम कहलाता है। सतयुग से त्रेता के बीच में संगम है, त्रेता से द्वापर के बीच में संगम है और द्वापर से कलयुग के बीच में संगम है, लेकिन कलयुग से सतयुग के बीच का जो संगम है ये पुरुषोत्तम है, यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहते थे। रहते कहाँ थे, कहेंगे पार ब्रह्म में रहते थे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती थी। वहां से आते हैं पार्ट बजाने, पास इस नाटक की आयु 5000 वर्ष की है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं, इतने सब मनुष्य पार्टधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है, कभी बंद होने का नहीं, चलता ही रहेगा। अब घड़ी भी तो चलती रहती है, कितना भी कहो तो मनुष्य उसको बंद कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो चलती रहती ना। तो बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, कभी बंद होता ही नहीं है। ये ड्रामा का नाटक चलता ही रहता है, कभी बंद होने का नहीं। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। तो इस नाटक को भी तो जानना चाहिए ना, कोई भी नाटक में पार्ट प्ले करता है वो पूरी हिस्ट्री को जानता है, शुरू में क्या होगा, कब होगा, मुझे कब जाना है, मुझे स्टेज पर कब जाना है, कब बाहर आना है, वो सब जानते हैं। तो बाबा की जिस नाटक को भी तो जानना चाहिए ना, इस नाटक को भी जानना चाहिए। ये है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में कितने होंगे, बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख होंगे। सतयुग में कितने होंगे, बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे, कौन होंगे सतयुग में बताओ, कौन होंगे देवता ही होंगे ना, या आप होंगे, जोर से बोलो हम ही होंगे। अच्छा, जो श्री कृष्ण के पास होंगे आसपास राज करेंगे वो हाथ खड़ा करें, जो होंगे श्री कृष्ण के आसपास, जो श्री कृष्ण के थोड़ा दूर होंगे वो भी हाथ खड़ा कर दें, दूर तो कोई नहीं जाना चाहेगा। तो आप सब क्या हुए, शुरुआत की रचना है, शुरू में जो 9 लाख है, बाद में तो धीरे धीरे बढ़ते है ना। और दिल्ली वाले तो क्या सोचते, हमको उनको तो बहुत नशा है, हम ही तो वहाँ होंगे, श्री कृष्ण भी वहाँ होगा, हम सब वहाँ होंगे, लेकिन दिल्ली वालों के साथ और भी बहुत होंगे, ये मत सोचना कि हम होंगे, लालच नहीं करनी है ना, सबको होना है वहाँ पर, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं सचिव में देवी देवता ही होंगे, ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है, मनुष्य सृष्टि पर फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किससे पूछो, वो अपना धर्म बताएंगे, लेकिन भारतवासी अपने धर्म के बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं बताते हैं। सिर्फ ये भारतवासी है जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, देवताएं तो पावन थे, ये है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते, देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूजे थे फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाया है, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, तो बाबा कहते ये है ही झूठा अर्थ, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, बाबा कहते बिल्कुल झूठा है, ये है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार। सच में ऐसी नहीं कहेंगे, सच खंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा कौन हो, तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में ही 84 जन्मों का पाठ मूंदा हुआ है, हम आत्मा कैसी हैं ये भी कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फुलाना है, ये तो जानते हैं, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी पूछो हर एक अपना परिचय में देगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाकी मैं आत्मा ये नहीं जानते। बाप कहते हैं हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी विनाश नहीं होता है। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है, ये नॉलेज बाप ही देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते, बाबा कितनी नई नई बातें सुनाते, तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान ही पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये भी गाली देना है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को क्या बनाता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण नरक बनाते अंतर, रावण भारत को नरक बना देते हैं सारी सृष्टि को, और बाप आकर के भारत को स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। गायन भी है मूत प्लीति कपड़, पंजाबी गुरुमुखी में कहते हैं ना कि ये सब मूत प्लीति कचरा है पतित, उसको आकर के शरीर पतित है इसको आकर के धोया, वहाँ विकार होता ही नहीं है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ड बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं है कि रावण कब आया, क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, तो बाबा याद दिला रहे 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, याद है क्या था, बाबा कहते याद है ना, कि बाबा याद दिलाते हैं। रावण ने कंगाल बना दिया, भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था, बाबा बच्चों से पूछते मैंने इतना धन दिया तो क्या किया, बच्चे भी बहुत होशियार हैं, वो ये नहीं कहेंगे हम कंगाल हो गए, इधर खत्म किया इधर किया वो किया, बाबा को ऐसा जवाब देते, बाबा आपके ही तो मंदिर बनाए, बाबा समझ आते, बच्चे इतने होशियार हो गए ज्ञान सुनने के बाद जवाब देना, बातें करना, रेस्पॉन्स करना उनको बहुत अच्छी तरह आता है, तो बाबा भी कहते अच्छे बनाए लेकिन अभी तो कंगाल हो ना, तो बाबा कहते हैं सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था, अभी क्या हालत है, सो सिवाय बाप के कोई भी सिरताज बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को ही हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा, हेवन में जाना है और ऊंच पद पाना है तो अभी क्या करना है, वैराग्य की स्थिति को धारण करना है, तो बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, फिर साथ में क्या कहेंगे, बाबा मीठे बाबा नमस्ते, आज पक्का कराया ना बाबा ने, है फिर से बोलो मीठे बाबा नमस्ते, इतना ऊंच बनाते ना। अच्छा अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने की संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। है चाबी जेब में रखी या कहीं रखी, इधर उधर रख देते ना, गुम हो जाती है तो ढूंढते रहते हैं। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बने। कहां पर बहुत सारा सामान पड़ा, उसका चाबी मिल जाए तो क्या हालत होती, सब कुछ मिल जाता ना। तो बाबा कहते चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसी अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। ये सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती। स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी उनके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी पांच विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। योग के बाद भट्टी के सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको सौगात दी जाएगी, कोई भी मिस नहीं करेगा। भट्टी में भी वह भट्टी के भाई बहने जो कि सेवा पर करने जाते वो भी बैठे रहेंगे, उनको सौगात मिलेगी। अभी अभी एक सूचना मिली है, कई बहने जो महाराष्ट्र वाले वो जानते होंगे कि जलगांव की जो क्या नाम है, मीनाक्षी बहन की लौकिक बहन नंदा बहन उसका नाम है, उसने कल रात को, कल गुरुवार था, कल रात को अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। काफी टाइम से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और कल रात को त्याग दिया और आज दिन में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 1983 से वह समर्पित रूप में वहां पर सेवाएं देंगी। तो आज सुबह 9:30 में जलगांव सेवा केंद्र से पार्थिव शरीर को ले जाएंगे अंतिम विदाई देने के लिए। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, मीनाक्षी बहन की लौकिक बहन। तो एक मिनट हम उस आत्मा के प्रति योग में बैठ करके श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सभी भट्ठी के भाई बहनें बैठे रहेंगे, भट्ठी के भाई बहनों को आज सौगात दी जाएगी, कोई भी मिस नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति।